हरे कृष्णा। सो हम लोग आज पाठ 7 की चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और ये भगवद गीता की भूमिका से लिया गया है। पाठ 7 प्रभु जी, 6 हम लोग कर चुके हैं, पाठ 7। ओके, आइस ब्रेकर, पवित्र विषयों व वस्तुओं का परिचय एवं उपयोग, तो इसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। खाली इसमें सिद्धांत ये है कि जो चीजें भगवान की सेवा में उपयोग होता है उनका सम्मान भगवान की ही तरह करना चाहिए, तो उसको पढ़ करके समझा जा सकता है, इसको चर्चा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। मंगलाचरण में वैष्णव प्रणाम, वांछा कल्पत रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के उन समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबकी वांछा को पूर्ण करने में कल्प तरु के समान हैं, दया के सागर हैं और तथा पतितों का उद्धार करने वाले हैं। एक चीज ये है कि इस श्लोक को हमें सीखना चाहिए जब भक्तों को देखते हैं तो प्रणाम करने के लिए। और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जब तक जीवात्मा भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेती है वो संतुष्ट नहीं हो सकती है, और जो उसकी इच्छाएं हैं जो भगवान से विमुख होने के लिए हैं वो उसको और असंतुष्ट करेंगे। तो इसलिए एक भक्त इस बात को समझते हैं और दूसरों को कृष्ण भावना भावित होने में मदद करते हैं, और इस प्रकार से उसकी सच्ची इच्छा को पूर्ण करने के विकल्प तरु के समान है। भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कल्प तरु नहीं हो सकते, क्योंकि भौतिक इच्छा कभी पूर्ण भी नहीं होती। एक इंटरेस्टिंग है, दया के सागर पर अगर आप विचार करें कि भक्त लोग अपराधों को सहन करने के लिए स्वाभाविक रूप से उनके अंदर वो गुण हो रहता है, और इसी कारण से जब भक्त के आश्रय में लेके हम भजन करते हैं तो हम बहुत बड़े प्रोटेक्शन में रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि काला कृष्णदास का पतन हो गया था और महाप्रभु उनको बचा के लेके आए थे, लेकिन बाद में महाप्रभु ने कहा नहीं मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भक्तों ने बड़े चतुराई से कहा कि इसको कुछ तो सेवा देनी चाहिए, तो उन्होंने नवदीप भेजा भक्तों को महाप्रभु की लीला के बारे में बताने के लिए। तो महाप्रभु के पास जाके वो कहते हैं हमें कोई व्यक्ति चाहिए जो नवदीप जाए और आपकी लीलाओं के बारे में और समाचार जो है वहां जाके बताए। तो महाप्रभु कहते हैं आप लोग की जो इच्छा वो आप करिए। कुछ स्वीटनेस अनुभव कर रहे हैं इसमें आप? वो भी जान रहे हैं, महाप्रभु जान रहे हैं किसको भेजेंगे, लेकिन और भक्त लोग भी बता नहीं रहे कि हम किसको भेजेंगे, कितना स्वीट है सारा कुछ। तो भक्त लोग जो है यही चाहते हैं कि जीव जो है कभी भक्त की मतलब भक्ति छूटे नहीं उसकी, पड़ा रहे और सेवा करता रहे, भक्ति करता रहे। ये बहुत बड़ा मतलब आशीर्वाद होता है, उनकी बहुत अच्छी भावना रहती है। इस भजन को हम नहीं गा रहे हैं, चर्चा के विषय पे आते हैं, नहीं जप के ऊपर आते हैं। जप एक विशेष क्रिया वैष्णव सदाचार से, बहुत अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग
जप एक विशेष क्रिया, हम किसी कार्य को महत्वपूर्ण मान लेते हैं तो उसके लिए विशेष समय निकाल कर रखते हैं। इसी तरह हर भक्त को अपना जप करने का समय विशेष करके जप करने में लगाना चाहिए तथा और कोई काम में नहीं लगाना चाहिए, चाहे वह कार्य भक्ति का ही क्यों ना हो। जैसे हमें जप करते समय अखबार नहीं पढ़ना चाहिए या किसी से बात नहीं करनी चाहिए या किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। जब हम जप करते हैं तब हमारा भगवान के साथ संपर्क बन जाता है, क्योंकि भगवान अपने नाम से अभिन्न है। नाम रूप में भगवान कृष्ण इस सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी बात आपकी बात सुन रहे हैं, इसलिए किसी के लिए भी इस संपर्क को भंग नहीं करना चाहिए।
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भक्ति में मन का अभिनिवेश होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी सत्य है कि आप कैसे भी जप करेंगे तो लाभ होता है, लेकिन प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से इस खिड़की को बंद कर दिया जाए, हाँ जी, तो लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में आप देखेंगे कि जब हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो हृदय का शुद्धिकरण महसूस करते हैं। मेरे गुरु महाराज से मैंने सुना था ये बात उनके लेक्चर में कि द नेम विल एक्ट बट द नेम विल एक्ट टू मेल्ट योर हार्ट वेरी क्विकली इफ यू चैंट अटेंटिवली. देखिए हम नाम जप कर क्यों रहे हैं पहले तो ये समझ में आना चाहिए. एवं व्रत स्व प्रिय नाम अकीर्त्या जातानुरागो धृत चित्त उच्चाई. ये जो व्रत लेके नाम कर रहे हैं उसका उद्देश्य है भगवत प्रेम और उसके द्वारा हृदय पूरी तरह से मेल्ट हो जाना चाहिए. अभी तुम्हारा हृदय हम लोगों ने सुना ही है थोड़ा सा स्टील फ्रेम टाइप का है. इस पे एक महाराज बोल रहे थे कि मेरा हृदय स्टील फ्रेम नहीं है, रबर टायर की तरह है. अभी भी हार्डनेस भी है और सॉफ्टनेस भी आ गई है. तो जब हम नाम सुनते हैं एसेंशियली मेन सिद्धांत यही है कि जब हम कुछ ध्वनि सुनते हैं तभी वो हमारे हृदय में अंदर जाती है. ये सिद्धांत है. जीव से स्पर्श करने मात्र से सारे पाप पुण्य मिल जाते हैं, पाप नष्ट होते हैं और ये बहुत बड़ी सुकृति का निर्माण होता है. लेकिन सत्य बात रूप तो यही है कि जब ज्ञान हमारे हृदय में तभी प्रवेश करता है जब हम कान से सुनते हैं, है ना. तो अब इसको एक एक्सक्लूसिव एक्टिविटी बनाने का मतलब क्या है. पहली चीज तो हमें ये देखनी होगी कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. ये जो हमको समझ में आना पड़ेगा कि आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. मैं आज एक सीनियर डिवोटी से चर्चा कर रहा था और वो किसी भक्त के कुछ पाप के बारे में चर्चा कर रहे थे. तो मैंने एक बहुत उनको एक सिंपल सा पॉइंट बताया कि हमने कहा प्रभु जी देखिए हम सब लोग जानते हैं, सब लोग अनुभव करते हैं कि सभी के हृदय में पार्श्विक प्रवृत्तियां भी हैं और दैविक संपदा भी है, दैविक प्रवृत्तियां भी हैं. अब वो भक्त हर साधक कितना उन पार्श्विक प्रवृत्तियों को से दूर हटने के लिए साधना कर रहा है, मेरे कहने का अर्थ है उसकी साधना में कितनी इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है कि वो पार्श्विक प्रवृत्तियां उस पर हावी होंगी या नहीं होंगी. आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे. और ये दायित्व, ये मेरा दायित्व है, मेरी मदद आप लोग कोई नहीं कर सकते इस तरह से. आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात. ये मेरा दायित्व है कि इन पार्श्विक प्रवृत्तियों को मैं अपने पे हावी ना होने दूं. भक्तों के संग में हम लोग बिहेव करते हैं ऐसे तरीके से, वो तो नेचुरल सी बात. बट फिर भी अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का दायित्व तो मेरा है ना. भक्तों का सानिध्य तो है ही, मदद तो है, लेकिन हमारा तो है ना मदद. अब हमें अपना प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना. तो अगर हम जप को अच्छे से करते हैं तो फिर निश्चित रूप से धीरे धीरे करके या कह सकते हैं बड़ी जल्दी जल्दी सारी वृत्तियां सबसाइड कर जाएंगी. एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्र में कि जो लोग सतुगुणी होते हैं उनके ये जो गुण है रजोगुण तमोगुण ये कम प्रभावित करते हैं. इसलिए हमारा लक्ष्य अभी तुरंत निस्त्रय गुण में होना नहीं है अपितु सतगुण में स्थित होना है ताकि ये बुरी प्रवृत्तियां बुरी इच्छाएं हैं उससे मतलब प्रभावित नहीं हो. और इसमें हमारा जप है ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है. अगर हम केवल नियम पूरा करने के लिए करते हैं या ढीलेपन से करते हैं तो उसका प्रभाव हमें कम दिखाई पड़ेगा अपने जीवन में. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट शुड बी एन एक्सक्लूसिव एक्टिविटी. हमने यह चर्चा किया था कि तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं नाम सेवा में. किसी को याद है? हमने चर्चा ये करी थी कि तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं नाम सेवा में. पहला चीज क्या है? बोली माइक के बोली. पहला चीज क्या है?
नाम और नामी में अंतर नहीं है.
यस, नाम और नामी में अंतर नहीं है. और इसी बात को यह समझाया जा रहा है कि भगवान के नाम को बहुत महत्व देकर के करना चाहिए. हम लोग अब यहाँ जिस पाठ साथ में है वहां पे साधक का वो लेवल नहीं कि कैसे भी करो, मांस खा के भी करो, वैसे करो. नहीं, वैसा नहीं है. 7 हफ्ते बीत चुके हैं, बीत जाएंगे जब तक आप पढ़ा रहे हो कम से कम. तो एक सिंसेरिटी आनी चाहिए नाम जप करने में. और अपने आप पाप की वासना और बाकी सब चीजें बड़ी जल्दी जल्दी समाप्त होती चली जाती है. दूसरा पॉइंट क्या था नाम सेवा में?
कोई भौतिक इच्छा नहीं रखनी,
भौतिक लाभ बदले नहीं, आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए. और तीसरा
हम भगवान से नाम की सेवा मांग रहे हैं भगवान से.
भगवान को प्रसन्न कर
प्रसन्न करने के लिए.
मैं इस चीज को फिर से रिपीट करूंगा और आप लोग इस बात को बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंटेंशन का कितना फर्क पड़ता है. आप मंगल आरती जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी के पांव आपका पांव किसी के पांव पे पड़ गया, उसे दर्द होता है. और अगर आप उसको अनजाने में रख दें तो वो आप क्षमा मांगेंगे क्षमा कर देगा. और आप उठ करके ऐसे दबा करके कस के मारिए उसको, आप बोले उसका थोड़ी क्षमा कर दीजिए. तो आप देख रहे हैं कि इंटेंशन का कितना अंतर पड़ता है. तो फिर भक्ति में इंटेंशन का कितना फर्क पड़ेगा. आप भगवान को प्रसन्न करने की भावना से कर रहे हैं और भले ही शुरुआत में आर्टिफिशियल लगे लेकिन एक्चुअली वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, और करते करते फिर हम कॉन्शियस होते चले जाएंगे कि हम इस चीज को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो है ही वो कार्य, लेकिन इंटेंशन भी हो, जैसे कि वो पांव का एक पांव पे लग जाना वो दर्द देने का कार्य तो करेगा ही, लेकिन इंटेंशन से बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भौतिक जगत में इंटेंशन का इतना फर्क पड़ता है तो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक प्रगति में कितना फर्क पड़ेगा, मेरी इंटेंशन क्या है, तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। इस चीज को दूसरे एंगल से भी आपको याद हो हमने चर्चा किया था, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। सब लोग नाम जप कर रहे हैं लेकिन जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उसके अनुसार उसको लाभ प्राप्त होगा, तो व्यक्ति को सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में और? ओके, चर्चा का विषय सनातन धर्म नित्य जीवात्माओं के नित्य पिता। अनंत कृष्ण प्रभु पढ़िए।
नित्य जीवात्माओं के नित्य पिता, इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, छीन हो जाता होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यह नियम है, चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत ले या फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, जीव भी सनातन है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन ब्रह्म तथा सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, यही शुद्ध जीवन कहलाता है।
पर आपने यहाँ पे देखी है, इंग्लिश में प्रभुपाद जी बोलते हैं आर वेरी एग्जिस्टेंस इज इन अ स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। इसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करके समझा सकते हैं, इस पूरे पैराग्राफ में हम यही सीख रहे हैं। Our very existence is in the state of non-existence.
हमारा जो यह अस्तित्व है वह जो अस्थाई, जो हमारा जो अस्थाई अस्तित्व है वह इस अस्थाई में है।
नहीं, हमारा इस समय जो हमारा अस्तित्व है वो क्षण भंगुरता में टिका हुआ है। हम लोग सनातन हैं और हमारे पास हर वस्तु, चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपके पास वस्तुएं हैं, वो सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल है, वो परिवर्तित होते चले जा रहे हैं और इसी कारण से हम लोग भय से ग्रसित रहते हैं। इस जगत की हर वस्तु, चाहे आपके माता पिता हों, चाहे आपके संबंधी हों, चाहे वो वस्तुएं हैं जो हमारे पास हैं, वो सारी चीजें हम सब जानते हैं कि एक समय के बाद वो नहीं रहेंगी। या आपके गुण भी, किसी के अंदर सुंदरता है, बुद्धि है, शक्ति है, हम सब जानते हैं एक दिन हमारे पास नहीं रहे। स्वीकार करते हैं ना इस बात को, एक दिन हमारे अंदर इतनी भी दिक्कत, इतनी भी शक्ति नहीं रहेगी कि एक स्टेप पांव उठा सके। मैंने तो आंखों से देखा है एक वक्त को, तो इस ये हमको भय देता है क्योंकि अगर हमारे पास शक्ति है, बुद्धि है, समान कुछ भी वस्तु, हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे पास रहे, चाहते हैं ना। लेकिन ये अद्भुत जगत है कि धीरे धीरे करके हम सब जान रहे हैं कि एक दिन हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। ऑब्वियसली जितना हम आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ेंगे तो उससे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन ये सत्य है इस जगत का, इसीलिए हर व्यक्ति भय से ग्रसित है अगर आप विचार करें तो। लेकिन प्रभुपाद यहां क्या बता रहे हैं कि इसके अलावा एक और सनातन धाम है, अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो भय से मुक्त हो जाएंगे कि ये चीजें छूटनी ही है। तो जब तक मेरे पास हैं और उनको उपयोग में कृष्ण की सेवा के लिए कर सकता हूं, मैं इसे करूंगा। अंततः मेरे असली जीवन आध्यात्मिक जगत में है। अगर इस व्यक्ति इस बात को व्यक्ति समझ जाए तो रियली घर बार छोड़ देगा, रियली घर बार छोड़ करके भजन करेगा कृष्ण का, अगर वाकई समझ लेता है इस बात को। आप बार बार इस चीज को समझिए, हम लोग शाश्वत हैं इसलिए हमारे आसपास की वस्तुओं में संबंधों में हम शाश्वतता का आरोप करने लगते हैं। हमें से कोई व्यक्ति सोचता नहीं कि हम परिवर्तित होंगे या एटलीस्ट हमारा शरीर परिवर्तित होगा या हमारी मृत्यु होगी। याद समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे मैंने बताया था गर्म दूध होता है वो उसमें बर्तन में रख दीजिए तो दूध में गर्मी आ जाती, सॉरी बर्तन में गर्मी आ जाती है लेकिन दूध की गर्मी उसमें रिफ्लेक्ट हो रही। और जो कोई भी प्रॉब्लम इस जगत में हम सोचते हैं वो अल्टीमेटली हमारी रियल प्रॉब्लम से हमारे ध्यान को हटाने के लिए। और क्या है सच्चा प्रॉब्लम, हमारा रियल प्रॉब्लम क्या है? हाँ लेकिन रियल यहां ये उत्तर नहीं है, यहां उत्तर ये है कि रियल प्रॉब्लम है भगवान से अपने संबंध की विस्मृति। तो गीता का अभिप्राय यही है जो हमारा सनातन धर्म है, कृष्ण की सेवा करना, इसको व्यक्ति वापस जागृत करता है। और जागृत करने का तरीका बहुत सिंपल है और वो है मां सुनो, सुनने से। जब व्यक्ति सुनता है धीरे धीरे करके समझ में आता है अपनी स्थिति और फिर कृष्ण की सेवा करना चालू कर देता है। कुछ कहना चाहते हैं? गुड गुड।
परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में घोषित किया है, सर्व योनेषु अहम् बीज प्रदत्त पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्र पार्षद या आचार्य के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं।
ये एक पैराग्राफ आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा लेकिन दिस कैन बी अ स्टीयरिंग रॉड फॉर आर कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक कृष्ण भावना भावित समाज में आने के बाद भी हो सकता है कि हम इस उद्देश्य को भूल जाएं जिसकी वजह से भगवान ने इस्कॉन की संस्था का संस्थापन इस समाज में कराया। इस्कॉन का उद्देश्य भगवद गीता के उद्देश्य से अलग नहीं है। तो भगवद गीता का उद्देश्य क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा? सनातन धर्म को जागृत करना। और वो सनातन धर्म का अर्थ क्या है?
भगवत धाम जाना।
सनातन धर्म का अर्थ
हमारा जो नित्य संबंध,
हमारा जो शाश्वत वृत्ति है भगवान की प्रेम प्रेममय सेवा, उसको जागृत करना। और इसके लिए ही हमने इसको ज्वाइन किया है और हमें करना चाहिए। बात बहुत सिंपल है लेकिन आप जानते हैं कि बहुत बार इस व्यक्ति को, इस पॉइंट को हम मिस कर सकते हैं। सारे कुछ चीजें कर रहे हैं लेकिन इस चीज को भूल जाएंगे कि हम इस्कॉन ज्वाइन क्यों किए। कोई एक वक्त मुझे बोला या खाना अच्छा मिलता है इसलिए मैं खाया। हाँ भाई ठीक है, शुरुआत में ऐसा हो सकता है, या उनको बहुत भूख लगती थी तो घर में खाने को सफिशियंट नहीं मिलता था तो इसलिए ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा उद्देश्य नहीं, एटलीस्ट शुरुआत में तो चलेगा लेकिन बाद में ऐसा होना चाहिए। ये कमेंट यहाँ पे किसी उपस्थित बात के लिए नहीं है, दूसरे यहाँ जो वक्त वहां उपस्थित नहीं है उसकी बात करता हूँ।
मान लें कि वो खाने के लिए ही आया है लेकिन अगर वो सुनता रहता है तो उसको फिर वो रियल,
वही मैं बोल रहा हूँ ना, प्रॉब्लम तो वही है कि हम लोग सुनने में कमी कर देते हैं। अगर सुनेंगे तो फिर धीरे धीरे समझ में आएगी नहीं केवल खाने के लिए नहीं आया हूँ, या फिर किसी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि वो सब कुछ छीन लिया जाएगा यहां से। वो इस्कॉन से नहीं, मतलब वो तो नियम ही है जगत का, सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो यानी कि ये नाम सेवा करते समय हमें सिद्धांत जब हम सुनते हैं, आज मैं पढ़ रहा था भक्ति तत्व सिद्धांत और एक था रसाभास। भक्ति तत्व सिद्धांत, जब कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के सामने आता था तो कुछ भी बोलेगा तो वो भक्ति तत्व सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए था और रसाभास नहीं होना चाहिए था। तो ये भक्ति तत्व सिद्धांत हमारे लिए सुनना बहुत जरूरी है कि हम कर क्यों रहे। भक्ति में सारे कुछ ये चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्यों कर रहे हैं सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी मात्रा बहुत कम है, अगर भगवान की दृष्टि से आप देखो तो बहुत कम मात्रा है। हम सभी लोग नगण्य है जो कुछ मतलब करने वाले लगे, लेकिन जिस जिस मतलब कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात। जैसे आप शबरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, विदुर जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो और ये क्यों क्लियर होता है, जब हम बार बार श्रवण करते हैं और बहुत सीखने की ललक से करते हैं। इट शुड नॉट बी अ फॉर्मल हियरिंग प्रोसेस। आप लोग फॉर्मल हियरिंग प्रोसेस का समझते हैं क्या मतलब? औपचारिक, हाँ भाई अब पूरा करना है, पूर्ति करनी नहीं। इट इज फॉर ईगरनेस टू हियर टू लर्न। कौन सी वस्तुएं नित्य हैं? मोबाइल, JBL स्पीकर सिस्टम, आश्रम, साबुन तेल, कौन सी है इनमें से? इनमें से टिक मार्क करें। आत्मा, अरे आत्मा था ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं था। आत्मा नित्य है और भगवान नित्य नहीं है?
भगवान का नाम भगवान,
यस, आत्मा नित्य है, भगवान नित्य है और
भगवान का नाम नित्य है।
भगवान का नाम नित्य है,
भगवान का नाम नित्य है, भगवान के परिकर भी नित्य है,
नित्य है और हमारा संबंध जो भगवान से वो भी नित्य है। ठीक है, अगर हर व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रसन्न है तो भगवान और उनके गोपनीय सेवकों को इस जड़ जगत में आने की क्या आवश्यकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है ना। मान लीजिए आप प्रसाद प्रसाद खा रहे हैं, आनंद में हैं, उसके बाद आप बाहर क्यों जाओगे कुछ खाने के लिए? अब आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रसन्न है और उनके दास भी हमेशा प्रसन्न है, तो यहाँ क्यों आते हैं?
दूसरे को बंधन से मुक्त करने के लिए, दूसरे का उद्धार करने के लिए।
बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसको ऐसे पुट करूंगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि गलती नहीं है। अपनों का उद्धार करने के लिए, मैं नहीं कहूंगा कि दूसरों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि ये आपने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा भाव थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि भगवान हमें अपना मानते हैं, क्योंकि हम उनके अपने हैं। क्या है वो? तुम्हारे लेई ते आमी होई नो अवतार, बंधु आछे के आछे तुम्हार। तो बंधु मतलब होता है वो संबंध भी है और हमेशा मतलब वो सच अच्छा सोचते हैं इसके बारे में। बहुत सुंदर बात है। तो अपनों का उद्धार करने के लिए आ रहा है, दूसरों का कह सकते हैं, लेकिन आप अच्छा सब लग रहा है ना, अपनों का उद्धार करने के लिए आ रहा है। भगवान अपना मानते हैं हम लोग, मानते क्या है, हम हैं ही, मानने की बात नहीं है, हम नहीं मानते अलग बात है, भगवान तो हमेशा मानते। इस चीज को हमें बार बार सुनना पड़ेगा, तभी भगवान की शरण लेने की प्रेरणा हमारे हृदय में रहेगी। कितना भी जीव कितना भी गलती किया है, कुछ भी किया है, लेकिन शरण ले रहा है भगवान की, तो फिर भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। वेरी नाइस। अभी इस बारे में आज ही मैं पढ़ रहा था, बड़ी भावमय बात थी कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनका नाम जहां तक मुझे स्मरण आ रहा पुरुषोत्तम नाम था संन्यास के पहले, तो काशी में जाकर के संन्यास ले लिए। और फिर अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे आए, उनको मालूम चला कि चैतन्य महाप्रभु हैं पुरी में, तो फिर वो पुरी में मिलने आते हैं, मतलब आ ही जाते हैं इसमें। तो कहते हैं कि भगवान मैंने आपको पागलपन में छोड़ दिया, लेकिन आप अपनी कृपा की डोरी से मुझको रस्सी से मुझे वापस लेके आ गए। बहुत बहुत अच्छा था, मतलब वेरी वेरी नाइस। ऐसे अगर अपने जीवन में अप्लाई करें तो ये बिल्कुल हम पर सही सही बैठती है ना बात। कितने जन्मों से हम भगवान को भूले बैठे हैं, लेकिन भगवान कृपा करके बार 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 हमें खींच के अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंटेंस, उसको मैं जब पढ़ रहा बहुत अच्छा था। बहुत नम्रता से वो भगवान के सामने विज्ञप्ति कर रहे थे। यस यस, हमको लगता है हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब तो भगवान निश्चित रूप से निकाल देंगे हमको। लेकिन लेकिन एक सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि मुंह से हरे कृष्ण मंत्र निकल रहा है अभी, तो भगवान ने रिजेक्ट नहीं किया। धर्म की तुलना सनातन धर्म से। एक और बात है इम्पोर्टेंट कि भगवान और उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो आपस के इस असीमित आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो वो चाहते वो रियली जान रहे हैं कि हम लोग वाकई दुख में। जैसे एक मेरा कल का एक छोटा सा अनुभव था, बड़ा अच्छा अनुभव था, लेकिन कि मैं भूखा था, मैंने प्रसाद पाया, फिर नीचे मंदिर जा रहा था मैं सेवा के लिए, तो मैंने एक कुत्ते को देखा, तो एकदम से मुझे स्ट्राइक किया कि देखो इसको भी, और वो ढूंढ रहा था खाना, तो एकदम से मुझे स्ट्राइक किया कि देखो इसको भी तो उतना ही कष्ट पहुंच रहा है भूख से जितना मुझे थोड़ी देर पहले पहुंच रहा था। तो मैंने कुछ दो थोड़ा बहुत प्रसाद था, हमने कहा हमको देना चाहिए चपाती। ऐसा फीलिंग हमेशा नहीं आता है, लेकिन एकदम से मुझे स्ट्राइक किया कि जितना कष्ट मुझको भूख से हो रहा है उतना इस जीव को भी तो हो रहा है। लेकिन वो जो आध्यात्मिक जगत में लोग हैं वो तो इन्फाइनाइट ब्लिस को अनुभव कर रहे हैं, इन्फाइनाइट ब्लिस, तो वो समझ रहे हैं कि कितने कष्ट में हम लोग पड़े हैं। इसलिए वो बार बार आते हैं, बार बार आते हैं और उपदेश देते हैं, भगवान भी आते हैं और अपने पुत्रों को भेजते हैं तो ताकि हम लोग उस पथ पे कम से कम मुड़े। और ये भी जानते हैं कि जब तक वो नहीं बताएंगे हम लोगों को आइडिया भी लगने वाला नहीं है। अगर भगवान जैसे गीता नहीं बोलते और प्रभुपाद जी आकर गीता यथारूप प्रस्तुत नहीं करते, किसी को आइडिया लगने वाला नहीं लेता। धर्म की तुलना सनातन धर्म से, कौन पढ़ेंगे? अनुप्रयोग पढ़ सकते।
अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है, यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका ना आदि है और ना अंत है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका ना आदि है ना अंत।
एक चीज थोड़ा समझने वाली है, सनातन धर्म और भागवत धर्म ये एक ही बात है, और धर्म का मतलब होता है कर्तव्य जो हमें करना चाहिए। तो सनातन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक जीव एक विशेष परिस्थिति में कुछ कर्तव्य करने के लिए बाध्य होता है। जो पुरुष है वो पुरुष की तरह कार्य करेगा, और जो स्त्री है वो स्त्री की तरह कार्य करेगी, जो कुत्ता है बैल है, अलग अलग जीवात्माएं अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार से कार्य कर सकती हैं। समझ आ रहा है ना? तो ये नैमित्तिक धर्म है, सर्कमस्टेंशियल। समझ में आ रहा है आपको बात? लेकिन भागवत धर्म क्या है? जो जीवात्मा का स्वरूपगत धर्म है, स्वरूपगत कर्तव्य है, और वो कृष्ण के प्रति है। थोड़ा समझिएगा इस बात को, और इसको जीवात्मा से कभी अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति माया की सेवा भी कर रहा है वो इनडायरेक्टली कृष्ण की ही सेवा कर रहा है। आप देखिए ना, अगर कोई कहे कि मैं कृष्ण से अलग हूं तो ये गलत है, क्योंकि आप धरती से अलग नहीं हो सकते हो, वायु से आकाश से अग्नि से अलग नहीं हो सकते हो। प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में समझाते हैं आप भगवान की शक्तियों से कभी अलग हो ही नहीं सकते, केवल अलग होने की भावना कर लेते हैं। समझ में आ रहा है मेरे बात? अलग होने की हम भावना कर लेते हैं कि हम भगवान से अलग हो गए। That's why it is called forgetfulness of our relationship. एक बच्चा अपने पिता का लड़का हमेशा रहता है, वो भूल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संबंध में कुछ परिवर्तन आ गया। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, केहो माने केहो ना माने सबै तुम्हार दास। आगे वाला श्लोक में इसके आगे बताते हैं, जो जो मानता है उसका शुभ होता है और जो नहीं मानता तो उसका विनाश होता है। ठीक है, तो यहां बता रहे हैं, बड़ा अच्छी बात बता रहे हैं। इस पर थोड़ा सा अगर आप मनन करें कि भगवान के हम सेवक कब हो गए, इसकी कोई आदि नहीं है, और भगवान के सेवक हम करना सेवा करना कब बंद करेंगे? कभी भी नहीं। खाली हमको स्वीकार करना है इस बात को। अगर श्रद्धा से स्वीकार कर ले तो तुरंत मुक्त हो जाता है इस बात। कि हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण की सेवा में लग जाए। और थोड़ा सा विचार कीजिए, ये चीज आपको बहुत शब्द बहुत सिंपल है, विचार कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति माया में चला जा रहा है तो किसकी सेवा कर रहा है? तो अब उसको दोबारा क्या करना चाहिए? कृष्ण की सेवा करना चाहिए। आपको बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी, लेकिन लोग बार बार इस चीज को समझ नहीं पाते कि अगर कोई भक्ति कर रहा है, कुछ डेविएशन भी हो गया, फिर भी उसको भक्ति ही करना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति ही कर रहा है। इन द सेंस माया की भक्ति कर रहा है, माया की सेवा कर रहा है, लेकिन माया तो कृष्ण की दासी है। ये बात बहुत सिंपल है, अगर हम समझ लें तो बहुत प्रेरणादायक लग जाएगा। दूसरा, हम जब साधना भक्ति कर रहे हैं तो ये हम अपने स्वरूप का, समझ ना, स्वरूप का धर्म है उसमें चल रहे हैं, नित्य धर्म है ये हमारा एक्चुअली, और ये अपने आप ही हमको परफेक्शन तक लेके जाएगा। और इसमें जितना कर रहे हैं वो भी अपने आप में परफेक्शन है, अगर आपको पता हो नेहा विक्रम नाशस्ति, भक्ति के जिस भी स्तर पे आप पहुंच गए हैं वहीं पे परफेक्शन है, नीचे नहीं जाता व्यक्ति। सो दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस धर्म के व्यक्ति को अनुशीलन करने में ही अपना जीवन को समय अधिक से अधिक बताना चाहिए। जो नैमित्तिक धर्म है वो केवल शरीर चलाने के लिए है ना। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द,
सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतः जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है ना अंत। जिसका आदि अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे, किंतु यदि हम विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है।
ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या समझ में आया? रिलीजन का अर्थ क्या मानते हैं प्राय लोग? एक प्रकार का विश्वास। और लोग कभी कभी हिंदू होते हैं, कभी उसका मुसलमान बन जाते हैं, मुसलमान से हिंदू बन जाते हैं, वापस क्रिश्चियन बन जाते हैं। और ये रिलीजन शब्द सनातन धर्म से कैसे अलग है?
क्योंकि सनातन मतलब किसी एक पट, जैसे हिंदू एक रिलीजन है तो लोग सिंधु से हिंदू बोलने लगे तो उसका एक
जल्दी नहीं
तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि जैसे हिंदू जो था 1500 साल 2000 साल पहले आया, ओके, लेकिन सनातन मतलब जो सदैव रहा है।
तो जो सदैव जो रहने वाला चीज है उसको आप किसी एक विशेष संप्रदाय या एक विशेष विश्वास के मत से आप बांध नहीं सकते हो। ये बात हमने आप सीखी। अब एक प्रश्न ये आ सकता है, तो फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं कि इस कृष्ण भावना को आप संप्रदाय में स्वीकार करें? अभी आपने कहा कि सनातन धर्म को संप्रदाय में बांधा नहीं जा सकता, तो फिर कृष्ण भावना को आप संप्रदाय में क्यों स्वीकार करते हैं? ये तो संप्रदाय में नहीं बांधी जा सकती है। माइक पे बोली। यस,
क्योंकि सनातन धर्म को अगर हम परंपरा में स्वीकार करेंगे तभी हम शाश्वत भागवत ज्ञान को समझ सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं।
यस, संप्रदाय का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि जीव को इस कौन का बना दिया जा रहा है या जीव को एक पर्टिकुलर संप्रदाय में बांधा जा रहा है। यहाँ संप्रदाय का अर्थ ये है कि इस शाश्वत धर्म को हम कैसे वापस जागृत कर सकते हैं। ये चार प्रमाणिक संप्रदायों में ही शिक्षा दी जाती है और वो शिक्षा भी सनातन है, वो शिक्षा परिवर्तित नहीं होती है। मैं भी श्लोक तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस बारे में कहीं मैंने शास्त्र में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि मैं ये बहुत गुह्य ज्ञान, भगवान भी ऐसे बोलते हैं, बहुत परम गुह्य ज्ञान है और ये सनातन शिक्षा है, ऐसे करके कुछ है। मैं भी अभी याद नहीं आ रहा है इस समय, लेकिन ये बात है। जो भक्ति की शिक्षा है, वेद, हमने इससे पहले भी चर्चा किया था, वेदों की शिक्षा है भगवान को जानना, और वेदों को हमने सुना था कि वो शाश्वत है। तो यानी सनातन धर्म को कैसे जागृत किया जाएगा, ये चार वैष्णव संप्रदाय में ही सिखाया जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव किसी संप्रदाय का है। इन द साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने उदाहरण सिंपल सा दिया था, जैसे फिजिक्स पढ़ता है या मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ता है, तो आईआईटी कानपुर में भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीख सकते हो, आईआईटी चेन्नई में भी सीख सकते हैं, आईआईटी खड़गपुर में भी सीख सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो सेम है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेकर के ही पढ़ेंगे। ये नहीं कहेंगे कि फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर वो मैं आईआईटी चेन्नई में कर लेता हूं, फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर आईआईटी कानपुर में करूंगा, थर्ड सेमेस्टर व्हाटएवर सेकंड ईयर जो है वो आईआईटी, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। सेम चीज आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप हर जगह वही मैथ्स पढ़ाई जा रही होती है सीबीएसई बोर्ड की, लेकिन स्कूल का एफिलिएशन अलग अलग होता है। सॉरी, स्कूल का एफिलिएशन सीबीएसई बोर्ड से होता है और हम लोग एक स्कूल में रह करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट मैटर मैथ्स ही होता है। ऐसे ही सनातन धर्म के बारे में प्रामाणिक शिक्षा हमको चार संप्रदाय में ही प्राप्त होती है। लेकिन इसका मतलब फिर मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव को आप किसी संप्रदाय में बांध देंगे। जीव कृष्ण कांश है, समझ जाना चाहिए। और इस कारण से हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऊपर हैं, वो नीचे हैं, वो नीचे हैं, वो ऊपर हैं। ये सांप्रदायिक भावना नहीं लेके आना चाहिए। जहां कहीं भी हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति कृष्ण के प्रेम में सेवा कर रहा है, उसका जरूर सम्मान करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर्टिकुलरली एक वैष्णव के लिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने संप्रदाय में चार प्रामाणिक संप्रदाय है, उसकी टीचिंग उसको प्रामाणिक रूप से फॉलो कर रहे हैं, तो हमें सम्मान करना चाहिए।
हाँ जी, अगर हम आंकड़ों के हिसाब से भी देखें कि जो चार संप्रदाय हैं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म, तो
चार संप्रदाय क्या बात कर रहे हैं,
चार जो धर्म है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ईसाई धर्म भी 2000 पूर्व आया था, मुसलमान धर्म भी 1500 पूर्व आया है, और सिख धर्म का भी 1200 पूर्व हुआ। तो इससे पहले हम क्या थे,
इससे पहले और इससे पहले भी हम थे,
और कौन सा धर्म,
ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि इससे पहले भी हम थे
और कौन सा धर्म था तब।
यस, और अगर व्यक्ति विचार करने लग जाए कि वो हिंदू है कौन और मुसलमान है कौन, तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई शरीर मुसलमान है कि मन मुसलमान है कि बुद्धि मुसलमान है कि आत्मा मुसलमान है, या सेम चीज शरीर हिंदू है कि मुसलमान है या ईसाई है। तो ये एक मूलभूत मिस्टेक तो हो ही रही है कि हम अपने शरीर से पहचान कर रहे हैं, जो कि धर्म का उद्देश्य नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि धर्म में शिक्षा इस तरह की दी जा रही है, लेकिन लोग शिक्षा स्वीकार इस प्रकार से कर रहे हैं क्योंकि चेतना शरीर में फिक्स्ड अप हो गई।
अच्छा एग्जांपल भी दे रहे, जैसे पानी का धर्म है तरलता,
वो आएगा। ओके, पढ़े, कौन पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे, बोले ही असनातन,
भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहां तक जीवों का संबंध है, प्रमाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल धातु में समझना होगा। धर्म का अर्थ है वह जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है।
सनातन धर्म क्या है, सनातन का अर्थ क्या है, इसका ना तो आदि है ना अंत है, और धर्म का अर्थ क्या है, अभी क्या सुना आपने पूरे उसमें, धर्म का अर्थ विश्वास नहीं होता है। धर्म का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का वो गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते हैं। तो सनातन धर्म का मतलब है कि हमारा वो गुण जिसका ना तो आदि है ना तो अंत है और उसको हमसे आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, सनातन धर्म और धर्म के बीच में अंतर पर चर्चा करें। सनातन धर्म और असनातन धर्म या रिलीजन के ऊपर चर्चा करें, ये कहना चाहिए। तो जो सो कॉल्ड धर्म है वो इसका एक समय होता है और कुछ समय के बाद समाप्त भी हो जाता है, ये भी इंटरेस्टिंग है ना। बहुत सारे धार्मिक मतामत होते हैं शुरुआत में होते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म की कभी ना तो आदि है ना अंत है। और एग्जाम्पल यहां पे क्या दिया गया है, अग्नि का और जल का। अग्नि में कौन से गुण होते हैं जो उसे अलग नहीं कर सकते हैं? अग्नि में तरलता नहीं होती है, अग्नि में ऊष्मा और ताप। आप इस पर फिर से विचार कीजिए, एक सूर्य की किरण को क्या आप सूर्य से अलग कर सकते हो? इस प्रकार से हम भगवान से कभी भी अलग नहीं है। तो आप सोचिए हम लोग कितनी माया में है, कभी भी हम भगवान से अलग नहीं है। जबरदस्त माया में है जहां हम सोचते हैं भगवान से हमारा कोई मतलब नहीं है। कितनी जबरदस्त पकड़ है, ऐसी स्थिति है जैसे सूर्य की, जैसे अग्नि है, अग्नि की से आप ऊष्मा को नहीं निकाल सकते, वैसे जीवात्मा को कभी भगवान से अलग नहीं कर सकते। बड़ी भयंकर बीमारी है, इसका इलाज जो है हरि नाम ही है। तो करते 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 हम धीरे धीरे ठीक हो पाएंगे। इतना प्रेम है, इतना प्रगाढ़ संबंध है। मैं चाहता हूं कि एक पैराग्राफ और है उसको पूरा कर लें ताकि हमारा पूरा चैप्टर हो जाए तो अच्छा रहेगा। सेवा करने की नित्य प्रवृत्ति, क्या नाम है इनका, दशरथी प्रभु पढ़िए।
जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों से करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है। एक व्यक्ति अ अपने स्वामी ब की सेवा करता है और ब अपने स्वामी स की तथा स अपने स्वामी द की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पत्नी पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चलें तो पाएंगे कि समाज में एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है, फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चीर सहचरी और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है।
ओके, जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति क्या है? सेवक की। वेरी गुड। और अगर हम लोग अपने आप को मालिक मानते हैं तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे स्वरूप से बिल्कुल अलग है। और इसीलिए सारे कष्ट इस भौतिक जगत में आते हैं, क्योंकि सारी बद्धात्माएं मालिक बनने में बहुत रुचि रखती हैं। और जबकि इसके जस्ट विपरीत है। और अद्भुत बात यह है कि मालिक बनने के बावजूद भी सेवा में लगे रहते हैं। मालिक आप फ्री में नहीं बनेंगे, जो आपके सेवक हैं उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, कुछ भी करनी पड़ेगी। इसके संबंध में चैतन्य महाप्रभु जब रामकेली के पास आए थे तो नवाब हुसैन शाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहते हैं कि मैं अपने सेवकों को पैसा नहीं दूं तो कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, लेकिन ये जो फकीर, उनको बोल रहे थे फकीर है जब भी है, नाम तो उनको पता नहीं था, ये जो है किसी को पैसा नहीं दे रहा है मैं देख रहा हूँ, फिर भी सारी जनता इनके पीछे दौड़ रही है, तो इसका मतलब है निश्चित रूप से ये भगवान है, मेरे को हृदय में ऐसा विश्वास हो रहा है। बाकी तो आप जानते ही हैं कि आजकल के राजनेता भी वो चुनाव के समय केवल चुनाव के समय हाथ ऐसा करेंगे कि हम आपकी सेवा अच्छे से करेंगे। हर व्यक्ति इस प्रकार से सेवा कर रहा है। और एक बहुत ही गहरी बात जो ये है वो ये है कि हम सुख का अनुभव सेवा के द्वारा ही कर सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है। चाहे हम अपनी इंद्रियों की सेवा करें, चाहे लोगों की सेवा करें। और कुछ लोग जो निर्विशेषवादी हैं, प्रभुपाद जी इस पर हमेशा आक्षेप करते हैं, वो कहते हैं कि आप बोलते हो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, तो जब जगत मिथ्या है तो फिर उसमें हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो? अगर खोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन उसका फिर क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं कि हम इस मिथ्या जगत में हॉस्पिटल खोल रहे हैं? हाँ मैं बोलूं हरिचंद्र प्रभु, कल मेरा ना आज मैंने सपने में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला, तो वाह प्रभु जी, वक्त तो बहुत महान है, आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नहीं बोलेंगे, सपने में कुछ किए गए बात का क्या महत्व है? तो ये हम देख सकते हैं, इसका कारण ये है कि ब्रह्म में मन लगता नहीं है, क्योंकि सेवा करने की वृत्ति नहीं होती। आज ही ब्रह्मानंद भारती जब मिले, आज भी इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने पढ़ा, तो ब्रह्मानंद भारती जब मिलते जतन महाप्रभु से तो कहते हैं बचपन से लेकर अब तक मैं खाली ब्रह्म का ध्यान करता आया हूं, लेकिन जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो मेरा आनंद बढ़ रहा है और मैं समझ पा रहा हूं कि आप ही कृष्ण है साक्षात। तो जीवात्मा जब तक कृष्ण की सेवा नहीं करती है तब तक वो सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकती। इसीलिए ब्रह्म परमात्मा भगवान, और अंतर क्या है, ब्रह्म में कृष्ण की सेवा नहीं होती, परमात्मा लेवल में कृष्ण की सेवा नहीं होती है, केवल प्रेम में सेवा भगवान के साक्षात्कार में होती। हम किन किन लोगों की सेवा करते हैं? सभी लोगों की सेवा करते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। भगवान के सेवा करने के परिणाम के साथ दूसरों की सेवा करने के परिणाम पर चर्चा और तुलना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरों की सेवा करने में मैं कुछ चीजें बोलूंगा, फिर आप लोग देखिएगा। एक चीज तो यह है कि दूसरे कभी संतुष्टि नहीं होते, दूसरा है भूल जाते। कितना भी किसी की सेवा करिए, थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो भूल जाते हैं। आज ही मैं सुन रहा था कि देखिए इंद्र की सेवा कर रहे थे साल दर साल, और एक बार नहीं किया तो पूरा समाज को खत्म करने पे आ गए। और एक अद्भुत बात है कि मथुरा में कोई पूजा नहीं कर रहा था इंद्र की, और उनको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि कंस वहां बैठा हुआ था। तो बताइए देवताओं की पूजा करने से क्या लाभ? और भगवान की सेवा कोई छोड़ भी देता है फिर भी भगवान कभी क्रोध नहीं करते। जैसे हम लोग सब जानते हो सुग्रीव ने बोला था भगवान राम को कि मैं आपकी मदद करूंगा, बाद में वो जब बाली को मार दिया था भगवान ने तो भोग में लग गए थे, तो भगवान ने गुस्सा नहीं किया कि वो लक्ष्मण जी को जाके बोला कि आप उनको जाके समझा दीजिए। या फिर ऐसे बोला, और बताते हैं और भी इससे जबरदस्त बात है कि भगवान राम बैठते थे नीचे और पेड़ों पे सारे बंदर कूदते रहते थे, भगवान कभी गुस्सा नहीं करते थे। तो ये भगवान का अद्भुत स्वभाव है कि नहीं? कितने सारे भक्त जो है कभी कभी भूल जाते हैं। साउथ इंडिया में एक भक्त थे, जहां तक मुझे आपको कथा पता हो, अलवर कथा में आता है, एक भक्त थे जो कि एक वेश्या के द्वारा प्रभावित हो गए थे, भगवान के लिए वो गार्डन बनाते थे, तो भगवान ने पूरा अरेंजमेंट किया था कि फिर से वो भक्त उनकी सेवा में आ जाए। नाम क्या है, मैं भूल रहा हूँ, नाम याद है, अलवर की सामने कथा, अलवर में कथा आती है। तो इस संबंध में देख रहे हैं कि एक बार भी कोई भगवान की सेवा कर दिया है तो भगवान उसे कभी नहीं भूलते, और छोटी से छोटी सेवा भी हो सकती है, एक प्रणाम मात्र हो सकता है, एक केवल नामोच्चारण मात्र हो सकता है। तो बहुत बड़ा अंतर इस जगत, और इस जगत में तो आप खप जाइए मर जाइए कितना भी कुछ कर लीजिए कभी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। एक बार किसी व्यक्ति ने महाराज समझा रहे थे कि महान व्यक्ति होता है उसे बोल दीजिए कि आपके सर में पीछे तिनका रखा हुआ है, तो अगर आपने इतना बता दिया तो अगर महान व्यक्ति होगा तो वो कृतज्ञता हम जीवन पर अनुभव करेगा। ये शील स्वभाव के बारे में समझाया जा रहा था इस प्रकार से कि थोड़ा सा भी उपकार करेंगे तो जीवन भर मानते हैं उसको, और जो खल व्यक्ति है ऐसे कितना भी उपकार कीजिए वो कुछ नहीं मानेगा उसको। तो ये है स्पेशली कंडीशन सोल, बदात्माओं के संग ऐसे रहता है, कितना भी उपकार करिए वो कुछ मानते नहीं। देखो ना भगवान कितना उपकार कर रहे हैं, पृथ्वी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, भगवान नहीं है, भगवान मर गए, भगवान से क्या मतलब, ऐसे करके बात करते हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं इसके पर भगवान की सेवा के संबंध में? यस,
की सेवा आनंदमय है और ये शाश्वत है और दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है।
बहुत अच्छी बात, भगवान की सेवा सुखमयी है, इस जगत में सेवा करने से सुख नहीं मिलता है। बहुत अच्छी बात। यस,
भगवान का सेवा करने से सबका सेवा ऑटोमेटिक हो जाता है।
भगवान की सेवा करने से वस्ता सबको सबकी सेवा हो जाती है।
कृष्ण तुष्टम जगत तुष्ट।
यस, कृष्ण तुष्टम जगत तुष्ट। यस,
भगवान की सेवा के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात उन्होंने, बहुत ही अच्छी बात बोली। जगत में किसी की भी सेवा करनी है आपको योग्यता चाहिए होती है, भगवान की सेवा करने के लिए आपको
कोई
योग्यता नहीं है, योग्यता श्रद्धा विश्वास बस, ये सिंपल शब्दों में कहें इच्छा चाहिए। आपकी इच्छा हो आप कोई भी सेवा कर सकते हैं। कुछ ना कुछ करना तो सबको आता है, खाना तो सबको आता है, कुछ भी नहीं करता तो कम से कम प्रसाद तो खा ही सकते। बहुत अच्छा, सुन तो सकता ही है। आज मैं कल ही मैंने श्लोक तो देखा, बहुत सुंदर श्लोक है 9-13 अध्याय का, कि लोग भगवान के बारे में ना जाने लेकिन साधु जनों से विद्वानों से सुनने के द्वारा सुन लिया और भक्ति करने लगते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं। बहुत अच्छा था, मृत्यु श्रुति पारायण, सुनने की आदत है, श्रेष्ठ व्यक्तियों से सुन करके विश्वास रहता है, ये हो गया तो भी भगवान के धाम चला जाएगा। जबरदस्त था वो पॉइंट, ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब लौटते हैं तो फिर प्रताप रुद्र को बताते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य कि ये भगवान है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य थे, उनको साक्षात्कार था, आप लोगों को पता है ना, उन्हें भगवान ने दर्शन दिए थे। ये जो है साक्षात्कार प्रताप रुद्र महाराज का नहीं था, बट यही तरीका है, महान आचार्य जिनका साक्षात्कार है उनकी बात पर विश्वास करके व्यक्ति को सीखना चाहिए भगवान के बारे में, भले उस समय उसका वो साक्षात्कार ना हो। ठीक है, सनातन धर्म सुख की चाबी, ये पढ़ लीजिए बस, उसके बाद फिर हम रुकेंगे। अनंत कृष्ण प्रभु पढ़ सकते हैं।
वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है, परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग तो सुख के लिए बने हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते, स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। प्रश्न, हमें भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए?
क्योंकि मंत्री बोला है कि 6 घंटा सेवा करना है। क्योंकि ये हमारा स्वरूपगत लक्षण है, ठीक है, और इसके द्वारा ही हम सुखी हो सकते हैं। इसे पेट को खिलाएंगे तो सारे अंग सुख हो जाएंगे। तो यहाँ चर्चा समाप्त हो गई है, उसके बाद यहाँ प्रणाम के बारे में बताया गया है, तो उसको तो आप पढ़ करके ही समझ लेंगे, इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे रुकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।